बाइबल पाठ है रोमियो 8:12-16, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। वो जो प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, निश्चित तौर पर अपने जीवन में बदलाव पाते हैं। क्या आपने अपना मन बदल दिया है इस संसार से प्रेम करने का परमेश्वर से प्रेम करने में? आपने कितना परमेश्वर के वचन का पालन किया है अब तक? मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हर पहलू में आप समृद्ध रहो और अच्छे स्वास्थ्य में बने रहो, जैसे आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है। इस आयत का अर्थ है कि आप आत्मा में आ चुके हैं तो फिर सब बातों में आप संपन्न होगे। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा है कि यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे तो जो कुछ हम उसे मांगते हैं वह हमें मिलता है। मेरे लिए जो कुछ भी मैं मांगता हूँ मुझे परमेश्वर से मिलता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़ कि मैं व्यापक रूप से अपने सदस्यों को दिखा सकूं। मेरी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हमेशा वो उत्तर प्राप्त करती है तुरंत परमेश्वर से मांगने के बाद। वास्तविकता में थोड़ा सा समय हो चुका है जब से मैंने अपने मसीह जीवन में ऐसा कुछ नहीं मांगा है, क्योंकि कुछ मांगने के लिए नहीं, क्योंकि कुछ भी कमी नहीं है मेरे पास, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मांगिए आपको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। सब बातों के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, विश्वास कीजिए कि आपने उन्हें पा लिया। इस तरह के बहुत से वचन है, ये वचन उनके लिए है जो आत्मा में आ चुके हैं। ये चिन्ह उनके साथ होंगे जिन्होंने विश्वास किया है, जो आत्मा में आ चुके हैं, इस तरह के काम उनके साथ होंगे। आपने बहुत बार अनुभव किया है और आप जानते हैं कि वो चिन्ह उनके साथ होते हैं जो आत्मा में आ चुके हैं, यहां तक कि मेरे रुमाल के बगैर भी। यदि आप आत्मा में आ जाते हैं तो तात्विक आशीषें शरीर की आशीषें आपके ऊपर आएगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप आत्मा में आइए। यदि कुछ ऐसा है जिसका उत्तर आपको भी नहीं मिला है, अगर आप आत्मा में आएंगे तो सब बातों में आपको उत्तर मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि आप सच्ची संतान और पुत्री और पुत्र बन गए हैं। तो फिर ऐसा क्या है जिसका आप उत्तर ना पा सकें? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप आत्मा में आइए। मैं आपसे विनती करता हूं, लेकिन कुछ ही है ऐसे जो आत्मा में आए हैं। ये बड़ी भद्दी बात है, क्यों वो ऐसे है हालांकि मैं उन्हें इतना सिखाता हूं। मैं इसके बारे में हर वक्त जिज्ञासु रहता हूं। एक और प्रश्न है, जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो वह आशीष पाता है, क्योंकि मेरे पास आशीषों का अधिकार है। कुछ लोगों को तो उसी वक्त आशीषें मिलती हैं, लेकिन कुछों को नहीं मिलती। वो जो आशीषें नहीं पाते, ऐसे बहुत से हैं। क्यों है ऐसा? वो जो आशीषें तुरंत पाते हैं वो बहुत सारे हैं और हमारे पास बहुत सी गवाहियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं चाहे वो कितना ही अक्सर प्रार्थनाएं क्यों ना पाएं, वो आशीषें नहीं पाता। ये भी मेरे लिए एक प्रश्न था। क्या है ऐसा जो आपको अब चाहिए? अद्भुत रीति से, यहां तक कि यीशु से पूछने से पहले ही पत्रस कि वो उस मंदिर के कर के लिए क्या करेंगे, यीशु इसके बारे में पहले से ही जानता था। यहां तक कि पत्रस के पूछने से पहले ही कि क्या करना है, उसने पहले ही उत्तर दिया। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपकी तमाम परिस्थितियों को जानता है। वो ये रास्ते भी जानता है कि आप कैसे पाएंगे जो कुछ आपको चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा से विनती कीजिए अपनी तमाम जरूरतों के लिए और उसकी अगुवाई का पालन कीजिए, तो आप सब बातों को प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, पत्रस अच्छे से पालन करता था, इसलिए वो 12 चेलों में पहले के योग्य बना। यीशु उसमें सबसे अधिक भरोसा करता था। मैं भी उनको ढूंढ रहा हूं जो पालन कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और मुझे बहुत से मिले हैं, वो जो पालन करने की इच्छा रखते हैं, जो संसार को दूर करते हैं और केवल पालन करते हैं। मुझे इस तरह के कुछ लोग मिले हैं, मैं उनके साथ रहूंगा जब तक वो नई यरूशलेम ना जाएं। कभी कभार यहाँ तक कि इस पत्रस ने भी अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल किया और पालन नहीं किया। मत्ती 14 अध्याय 22 से लेकर 33 पद में हम वहाँ देखते हैं कि यीशु नाव के नजदीक पानी पर चल रहा था, जहाँ उसके चेले नाव पर थे। यीशु को पानी पर देखकर पत्रस ने कहा कि प्रभु, यदि ये आप है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। इसलिए यीशु ने उसे आने को कहा और पत्रस नाव से बाहर निकला और पानी पर चलना उसने शुरू किया। क्या उसने पालन किया या नहीं? हाँ, उसने पालन किया। उसने उस बिंदु तक पालन किया। लेकिन जब उसने हवाओं से चलती हुई लहरों को देखा तो वो डर गया। हम कह सकते हैं कि शारीरिक विचार इस तरह से उसके मन में आया कि क्या होगा अगर मैं डूब जाऊंगा। इसलिए वो यीशु की बातों का पालन नहीं कर पाया जिसने उसे आने को कहा था। उसका शरीर डूबना शुरू हो गया। जिस क्षण वह डूबना शुरू हो गया, उसकी आज्ञाकारिता नहीं रही। यद्यपि वह चल रहा था, लेकिन जिस क्षण उसने संदेह किया, वह डूबना शुरू हो गया, क्योंकि अब वह पालन नहीं कर रहा है। वो ऐसा कह सकता है कि जैसा मुझे कहा गया था मैंने तो पालन किया, लेकिन किसी बिंदु पर आकर मैं डूब गया। नहीं, ये सत्य नहीं है। वो डूबा क्योंकि उसने संदेह किया, इसलिए वो कह नहीं सकता कि उसने पालन किया। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप विश्वास से पालन करते हैं, तो आप बिल्कुल भी संदेह नहीं करेंगे। व्यापार के मामलों में भी ऐसा ही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया। यदि कोई व्यक्ति आत्मा में नहीं आया, अगर वो मुझसे कहता है, तो मैं नहीं कहता उसे कि इस तरह से कीजिए, क्योंकि वह पाप की दीवार को खड़ी कर देगा अगर वो मेरी बातों का पालन नहीं करेगा, क्योंकि वो संदेह कर सकता है या शिकायत कर सकता है अगर कुछ गड़बड़ा गया तो, यदि उसने पालन भी किया हो। यद्यपि चीजें ऐसा लगता है कि गलत हो गई है, लेकिन वह संपन्न हो जाएगी। लेकिन अगर उसका विश्वास सिद्ध नहीं है तो वह पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पत्रस को पकड़ा और उससे कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ पर हम एहसास कर सकते हैं कि यद्यपि हम पालन करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम पालन नहीं कर पाते जब तक हमारे पास शारीरिक विचार हो। आजकल के दिनों में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने व्यापार शुरू किया है ये सोचते हुए कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करना चाहते हैं, और वो मुझसे यह कहकर पूछते हैं कि आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिलती है, इसलिए सफल होने के लिए मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए। उनका शुरुआती इरादा तो अच्छा है, लेकिन अगर चीजें वैसे नहीं होती जैसा उन्होंने शुरुआत में सोचा था, या जब वो उन चीजों का सामना अपने असल जीवन में करते हैं, तो उनमें से कुछ अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बुरा है। वे संदेह करते हैं यह सोचते हुए कि क्या यह सही इरादा है। यहाँ तक कि वो अपने बिजनेस की दिशा ही बदल देते हैं। वो संसारिक विधियों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखे बगैर, और अंत में वो कुछ ऐसा करते हैं जो गैर कानूनी होता है। इसी प्रकार से चाहे आप कितना ही परमेश्वर के वचन का पालन करने की कोशिश करें, आप कभी नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से शारीरिक विचारों को नाश ना करें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पत्रस ने कुछ गलतियां की अपने बदलाव की प्रक्रिया में, लेकिन यीशु में उसका भरोसा और प्रेम कभी नहीं बदला। पत्रस हमेशा सब बातों का पालन करना चाहता था यीशु की, लेकिन जब तक उसके पास शारीरिक विचार थे, वो पूरी तरह से यीशु के साथ एक नहीं हो पाया। मत्ती 16 अध्याय में हम एक घटना को देख सकते हैं जहां पर पत्रस को अवश्य ही यह दोष महसूस हुआ होगा। एक बार यीशु ने चेलों से कहा कि लोग उसे क्या कहते हैं, और उनका उत्तर सुनने के बाद यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, और पत्रस ने उसे संतुष्ट करने वाला उत्तर दिया। उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने पत्रस की प्रशंसा की और महान आशीषों का वचन उसे दिया। लेकिन उस घटना के थोड़े ही समय बाद पत्रस को यीशु ने बहुत कड़े शब्दों में डांटा, और इस समय के आसपास में यीशु ने क्रूस की पीड़ाओं के बारे में बताना शुरू किया, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। मत्ती 16 अध्याय 22 पद में लिखा है, इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करें, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों में नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक अर्थ में पत्रस यीशु को तसल्ली दे रहा था अच्छी बातों से, लेकिन आत्मिक रीति से वो परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ा हो रहा था। इसलिए यहाँ तक कि पत्रस जो प्रधान चेला था, यीशु ने उससे कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो। यदि ऐसा मैं आपको कहूं कि शैतान मेरे सामने से दूर हो, जब आप परमेश्वर के कामों को बाधित करते हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? ये पत्रस का हृदय कितना दुखित हुआ होगा इन बातों को सुनने के द्वारा कि उसका प्रिय स्वामी यीशु उसे पीड़ाएं उठानी और मरना है। लेकिन यह वह धार्मिकता थी जो मनुष्यों की नैतिक समझ से उत्पन्न होती है। शारीरिक रूप से यह अच्छा लगता है कि इस तरह से अपने स्वामी के बारे में सोचें, लेकिन आत्मिक रूप से ये वास्तविकता में शारीरिक विचार था जो परमेश्वर के कामों को बाधित करेगा, परमेश्वर के कामों को बाधित करेगा। मेरा भी एक ऐसा ही अनुभव रहा है जब मैं एक चर्च के कार्यकर्ता के साथ काम कर रहा था। कुछ ऐसे कार्यकर्ता है हमारे चर्च में जिन्हें संसार में भी पहचान प्राप्त हुई है उनकी विश्वास योग्यता के द्वारा। जब वो परमेश्वर के कार्य के लिए कार्यकर्ता बने, तो मैंने देखा है कि उनमें से बहुतों को अपने स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को नाश करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जब वो चर्च के कार्यकर्ता बने, तो वो चर्च के लिए परिश्रमी थे और चर्च के लिए और चर्च के सदस्यों के लिए भी, लेकिन उनकी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं के कारण वो कभी कभार परमेश्वर की इच्छा नहीं समझते और ना ही चरवाहे के हृदय को। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे कार्यकर्ता बने जो शारीरिक विचारों का इस्तेमाल ना करें। यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि एक ही आत्मा है, इसलिए हम सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज ना सुने, क्योंकि प्रत्येक के अलग अलग सुझाव होते हैं, इसलिए हमें या तो सहमत या असहमत होना पड़ता है। इसलिए अब चाहे आपने कितना ही अच्छा अपनी ओर से क्यों ना किया हो, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। यीशु ने अपने चेलों को अपने हृदय से दूर नहीं निकाला, उस क्षण तक भी जब तक उसने अपने अंतिम श्वास को क्रूस पर लिया। यीशु के इस गहरे प्रेम के द्वारा पत्रस अंत में बदल गया। उसने शारीरिक विचारों का नाश किया और प्रभु के साथ एक हो गया और बहुत सी आत्माओं को उसने जीता। उसने हजारों लोगों को पश्चाताप कराया केवल एक ही बार में। उसने इस तरह की अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया कि लोग उसके सामने बीमार लोगों को लाते थे इस आशा के साथ कि उसकी छाया ही उन पर पड़ जाए। लेकिन तो भी उसे और भी अधिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और भी सिद्ध बनने के लिए। पत्रस पवित्र था कि परमेश्वर के द्वारा एक सामर्थ्य प्रेरित के रूप में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन तो भी उसके अंदर शरीर के दाग थे। इसके बारे में हम अगले सत्र में बात करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब यीशु यरूशलेम के शहर में पहुंचा क्रूस उठाने के लिए, उसने अपने चेलों को कहा कि वो कुछ काम करे। लूका 19 अध्याय 30 पद में लिखा है कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यीशु ने उन दो चेलों को भेजने के लिए कैसे चुना होगा? बारह चेलों में से क्या उसने उम्र के हिसाब से छांटा होगा? आज्ञाकारिता केवल वही और एक बिल्कुल मानक था। पहला मानक उनकी आज्ञाकारिता रही होगी। यदि चेले यीशु की बातों पर संदेह करते या उस तरह से करते जैसे उन्हें अच्छा लगता, तो शारीरिक विचारों के कारण कोई भी फल उत्पन्न नहीं होता। चेले प्रभु के साथ हर वक्त चलते थे। प्रभु ना तो पहले कभी गधे के स्वामी से मिला था, ना ही कभी उसे कुछ दिया था। प्रभु अकेले नहीं चलता था, क्योंकि उसके चेले हमेशा उसके साथ रहते थे। प्रभु कहता है कि एक गधे को ले आए, यहां तक कि उसका पैसा चुकाए बगैर, यहां तक कि स्वामी से पूछे बगैर कि उसे क्या लगता है। इसलिए उसे उस तरह के व्यक्ति को भेजना पड़ा जो बिना संदेह के पालन कर सके। यदि वह उन्हें भेजता जो संदेह करते तो शैतान काम करता। दूसरे शब्दों में शैतान स्वामी को भड़का ताकि वह गधा ना दे। ये अदृश्य आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या ये वैसा है, लेकिन मैंने आपको बहुत से दृश्य उदाहरण दिए हैं इस बात को समझाने के लिए। यह आत्मिक युद्ध है। कार्यों के परिणाम पूरी तरह से अलग होंगे। इस बीच में जब आप विश्वास दिखाते हैं और जब आप अपना विश्वास नहीं दिखाते, अगर आप विश्वास से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो असंभव संभव हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करते तो यहां तक कि संभव भी संभव नहीं हो सकता। जो कुछ भी मैं करता हूं, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि क्या कुछ ऐसा है जो ना हुआ हो। मेरे लिए सब कुछ संभव हुआ है आज तक। लेकिन अगर चर्च का सदस्य संदेह करता है तो संभव भी असंभव हो जाता है। मेरे आसपास के कार्यकर्ता कुछ भी संदेह नहीं करते, जो कुछ भी उन्हें करने को कहा जाता है। यहाँ तक कि बाहरी विदेशी क्रूसेड में जाने के लिए भी, विदेशी क्रूसेड में जाने से पहले हमारे लोग वो दौरा करते हैं, लेकिन वो संदेह नहीं करते। वो विश्वास करते हैं कि एक बार जब वो अपने चरवाहे के साथ उस देश में कदम रखेंगे तो शत्रु दुष्ट और शैतान वो शांत हो जाएगा और तमाम बाधा वाला वातावरण गायब हो जाएगा। इसलिए वो चिंता नहीं करते, वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। स्वाभाविक तौर पर जब वो उस देश में जाते हैं तो वो देख सकते हैं कि चीजें बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसा उन्होंने विश्वास किया। तमाम प्रकार की बाधाएं शांत हो जाती हैं। मीडिया के साथ एक बार का इंटरव्यू सब बाधाओं को साफ कर देता है। हम केवल एक या दो बार इन चीजों से नहीं गुजरे, वरन बहुत से अनुभव के द्वारा हम विश्वास में स्थिर हो पाए हैं। इसलिए हम चीजों के बारे में चिंता नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हम केवल विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चाहे असंभव ही क्यों ना हो। वास्तविकता में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं रहा है। हमने हमेशा परमेश्वर को महिमा दी है। ये न्याय है जो आत्मिक क्षेत्र का नियम है। यदि चेले अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते और यीशु की बातों पर संदेह करते या अपने तरीके से करते तो वो वचन का फल उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए आप इस तथ्य को इस्तेमाल करें और अपने जीवन में इसको लागू करें जो कुछ भी आप करते हैं। इस कारण से यीशु ने उन चेलों को चुना जो उसकी बातों पर भरोसा रख सकते थे। वो बारी बारी से चेलों को नहीं भेजता था, बदले इसके वो आमतौर पर पत्रस, यूहन्ना और याकूब को भेजता था। इस वक्त बहुत से देशों से हमने क्रूसेड और कॉन्फ्रेंस करने के लिए विनतियां प्राप्त की है। वो उत्सुकता से हमारे मिशन का इंतजार कर रहे हैं और प्रभु सोच रहा है कि मैं किसे भेजूं। क्या आप वो नहीं हो सकते जो स्वयं सेवक बन जाए? हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप बिना तैयारी के साथ अपने आप को दे दें। सबसे पहले आपको आज्ञाकारी कार्यकर्ता बनना है जो साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके और उसका पालन कर सके। यहां तक कि आप पूरी तरह से अभी पवित्र नहीं हैं, लेकिन आपके शारीरिक विचार नाश हो जाते हैं उतनी तेजी के साथ जितना आप पालन करते रहते हैं। आप ऐसे कार्यकर्ता में बदल सकते हैं जो साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सके। यदि आप ऐसे कार्यकर्ता बन सके जो पवित्र आत्मा के साथ कार्य कर सके तो उद्धार की पहुंच विशाल हो जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि हम तब योग्य हो पाएंगे कि पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा और सामर्थ्य के द्वारा अधिक से अधिक आत्माओं को जीत सके। वो सामर्थ्य जो रुमाल में पाई जाती है। कितनी अधिक कलिसियाएं ऐसी है जो मानमिन चर्च की कलिसियाएं या संघी कलिसियाएं बनने के लिए उत्सुक है। पास्टर संचुन ली वो म्यांमा गए, जो कि एक कम्युनिस्ट देश है, रुमाल की प्रार्थना सभा के लिए। बहुत से लोग वहां पर एकत्र हुए। उन्होंने अपेक्षा की थी कि 200 या 300 लोग आएंगे और उन्होंने सरकार से अनुमति प्राप्त की, लेकिन वहां पर 1300 लोग एकत्र हुए। बहुत सी कलिसियाएं हमारी शाखा और संघी कलिसियाएं बन गई। जहां कहीं भी हम गए ऐसा हुआ है, जहां कहीं भी हम रुमाल से जाते हैं महान संख्या में दास और कलिसियाएं वो एकत्र होते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जब समय आता है पूरा संसार रुमाल की प्रार्थना सभाओं की विनती करेगा, हमें वहां जाना है उन सबके पास। प्यारे भाई और बहनों, कल्पना कीजिए कि कितने लोग चंगे होंगे और उद्धार पाएंगे और बदल जाएंगे और कितनी कलीसियाएं हमारी शाखा कलीसियाएं बन जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, मैं पतरस के बारे में बात कर रहा था, विशेष रूप से उस प्रक्रिया के बारे में जिसके द्वारा वो उस प्रक्रिया से गुजरा कि उसने अपने शारीरिक विचारों को दूर किया और आज्ञाकारिता का प्रशिक्षण लिया। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने से पहले भी पतरस कोशिश करता था हर बातों में यीशु का पालन करने की, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद उसने पवित्र आत्मा की आवाज की अगुवाई का अनुसरण किया और प्रभु की इच्छा का अनुसरण और भी विविधता के साथ किया। उसने पश्चाताप के कार्य प्रकट किए और अद्भुत चंगाइयां प्रकट की और शुरुआती कलीसियाओं में जागृति लाई। उस समय तक पतरस का हृदय पहले से ही पवित्र बन चुका था, लेकिन तो भी हुआ पवित्र आत्मा की आवाज को और भी गहराई से सुनने के लिए वो प्रशिक्षणों से गुजरा, क्योंकि उसके पास वो थे जिन्हें हम शरीर के दाग कहते हैं। परंतु यद्यपि आप संदेश सुने भी कि कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं बहुत घंटों तक, इसका कोई प्रयोग नहीं होगा जब तक आप उसे अपने वास्तविक जीवन में लागू ना करें। वो जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, इस क्षण में जब आप इस संदेश को सुनते हैं आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करना है, जबकि वे सब जिनके पास पवित्र आत्मा है अवश्य ही उन्हें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, और वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वास्तविकता में यह मुश्किल है, केवल कुछ ही लोग पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस कारण को एहसास करें कि क्यों, इसीलिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा अगर आप उसे अपने ऊपर लागू ना करें। मुझे आशा है कि आप सक्रियता से संदेश को अपने जीवन में लागू करें। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने तमाम शारीरिक विचारों को नाश करें पतरस के समान, और ऐसे कार्यकर्ता बने जो पवित्र आत्मा के साथ एकजुट है। आइए संदेश पर सोचते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। यह संदेश जो हमने आज सुना है हमें जीवन और विश्वास बने। हमें आशीष दीजिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज, अगुवाई और प्रेरणा को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, हमारे लिए कार्य कीजिए। कृपया हम एहसास करें कि क्यों हम साफ रीति से पवित्र आत्मा की आवाज, अगुवाई और प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाते। हम कैसे आवाज, अगुवाई और पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, जब हम वास्तविकता में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, पालन करते हैं, तो हम सुन सकते हैं। जब हम हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं और निरंतर शारीरिक विचारों को नाश करते हैं, जब हम संसारिक चीजों को हम में से दूर करते हैं, जब हम उन्हें निकाल देते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है और हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। पिता परमेश्वर, कृपया हमारी मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुने और अगुवाई और प्रेरणा पवित्र आत्मा से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानमिन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुखाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं, तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं, तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें, वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, पिता कोई दाग वहां रह जाए, तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ, पिता मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की, पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो, दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।